بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ نساء کی 58 اور 59 آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری شہات محمد انور نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا اللہ كان سميعا بصيرا۔
جميل۔
يا أيها الذين آمنوا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। निसंदेह ईश्वर तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उनके मालिकों को लौटा दो, और जब कभी लोगों के बीच फैसला करो तो न्याय से फैसला करो। निसंदेह ईश्वर तुम्हें अच्छे उपदेश देता है, निश्चित रूप से वो सुनने और देखने वाला है। हे ईमान वालों, ईश्वर का आज्ञा पालन करो तथा पैगंबर और स्वयं तुम में से ईश्वर द्वारा निर्धारित लोगों का आज्ञा पालन करो। यदि किसी बात में तुम में विवाद हो जाए तो उसे ईश्वर की किताब और पैगंबर की ओर पलटाओ, यदि तुम ईश्वर और प्रलय पर ईमान रखते हो। निसंदेह विवादों को समाप्त करने के लिए ये पद्धति बेहतर है और इसका अंत अधिक भला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बुधवार है, जनवरी की 26, जमादी सानी की 23 और बहमन माह की 6 तारीख। विगत की ही बात, कार्यक्रम का आरंभ हम विश्व समाचारों से करेंगे, जिसके बाद राजनीतिक चर्चा आप सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के बाद दो साप्ताहिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे, शौर्य गाथा और आजकल। तो ये थी रूपरेखा। कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। भारतीय गणतंत्र दिवस पर ईरान के राष्ट्रपति ने बधाई दी है। राष्ट्रपति का कहना है कि प्रतिबंधों के हटने की स्थिति में समझौता संभव है। इराक के राष्ट्रपति ने सीरिया से लगने वाली सीमा का औचक दौरा किया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन को मॉस्को के विरुद्ध लगातार उकसाया जा रहा है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के गणतंत्र दिवस पर इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अलग अलग बधाई संदेश भेजे हैं। सैयद इब्राहिम रईसी ने बुधवार को भारत के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने बधाई संदेश में लिखा है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान और भारत एशिया के वे प्राचीन देश हैं जो समृद्ध संस्कृतियों और सभ्यताओं के स्वामी रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। इब्राहिम रईसी ने लिखा कि ईरान भारत के साथ संबंधों को विस्तार के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति रखता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने आशा व्यक्त की है कि दोनों देशों के बीच प्राचीन संबंधों की छाया में दोनों पक्ष हर क्षेत्र में संबंध विस्तार के इच्छुक हैं।
राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अत्याचारपूर्ण प्रतिबंध हटाए जाने की स्थिति में समझौता हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति के अनुसार सामने वाला पक्ष अगर ईरानी राष्ट्र के विरुद्ध अपने अत्याचारपूर्ण प्रतिबंध हटा लें तो फिर हर हालात में समझौता हो सकता है। उन्होंने मंगलवार की रात एक टीवी कार्यक्रम में ये बात कही। राष्ट्रपति से जब ये पूछा गया कि वियना वार्ता कैसे आगे बढ़ रही है और अगर अमेरिका की ओर से बहुत गंभीरता के साथ ईरान से सीधी वार्ता की बात कही गई तो ऐसे में ईरान का दृष्टिकोण क्या होगा, इसके जवाब में राष्ट्रपति सईदी ने कहा कि इसके जवाब में राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि ये मांग बहुत पहले की जा चुकी है, लेकिन अब तक अमरीकियों के साथ वार्ता नहीं की गई है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे संबंधों की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि वे देश जो टकराव चाहते हैं तो उनके मुकाबले में हम डटे रहेंगे। अपनी रूस यात्रा के बारे में इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस बारे में रूस के साथ हम एकमत हैं कि डॉलर के वर्चस्व को तोड़ा जाए और हम आपस में अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करें।
ईरान ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में विस्तार पर बल दिया है। राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ईरान समस्त देशों, विशेषकर पड़ोसी और इस्लामी देशों के साथ संबंधों में विस्तार चाहता है। राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी ने तेहरान में ब्रुनेई के नए राजदूत का प्रत्यय पत्र स्वीकार करते हुए पड़ोसी देशों के साथ संबंध विस्तार पर बल दिया। ईरान की नई सरकार ने जब से कार्यभार संभाला है उसने संतुलित विदेश नीति अपना रखी है और उसने अपने क्रियाकलापों से यह दर्शा दिया है कि समस्त देशों, विशेषकर पड़ोसी और इस्लामी देशों के संबंधों को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी ने इस समय दुनिया में होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए कहा कि राष्ट्रों के हित नए विश्व को समझने और दूसरे देशों के साथ लेन देन पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की विदेश नीति की एक विशेषता प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने के अलावा राष्ट्रीय हितों की आपूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं से लाभ उठाना है।
अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ईरान के खिलाफ अधिक दबाव की जो नीति अपनाई थी वो खुली पराजय थी। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को दिनचर्या की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल देकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की जो नीति अपनाई थी वो खुली पराजय व विफलता थी। उन्होंने ईरान के संबंध में ट्रंप सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वास्तविकता यह है कि अमेरिका की पिछली सरकार हमारे लिए खतरनाक विकल्प छोड़कर गई है और अधिकतम दबाव की नीति खुली पराजय थी और उसके खिलाफ हर वो चीज़ व्यवहारिक हो गई जिसका वचन दिया था। नेड प्राइस ने कहा कि ट्रंप ने वचन दिया था कि अधिकतम दबाव की नीति से वो ईरान के साथ अच्छा समझौता कर लेंगे, पर वो व्यवहारिक नहीं हुआ। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तेहरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति के उल्टे परिणामों को बयान करते हुए कहा कि ट्रंप ने वचन दिया था कि अधिकतम दबाव से वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम में विघ्न व अंतराल उत्पन्न कर देंगे, परंतु इसका उल्टा नतीजा निकला।
इसराइल की आंतरिक सुरक्षा अध्ययन केंद्र INSS ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तेल अवीव के अंदर ईरान का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। INSS ने ज़ायोनी प्रमुख को अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि तेल अवीव अकेले ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। अल अरबी अल जदीद समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार INSS ने अपनी रिपोर्ट में बल देकर कहा है कि ईरान इसराइल के लिए यथावत सबसे बड़ी चुनौती है और इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम में प्रगति के दृष्टिगत अकेले तेहरान का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार INSS की रिपोर्ट में आया है कि इसराइल को अमरीका के साथ अपने संबंधों और सहकारिता को मजबूत करने की ज़रूरत है। ईरान के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में सहमति बने या न बने, INSS ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि ईरान क्षेत्र में अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है और हिजबुल्लाह तथा दूसरे गुटों के वे मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन इसराइल की सुरक्षा के लिए खतरा है जो अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों तक पहुँच सकते हैं।
यमन के अधिकारी ने कहा है कि संयुक्त अरब इमारात अगर यमन के विरुद्ध हमलों को नहीं रोकता है तो उसको और बड़े हमलों का सामना करना होगा। अल मयादीन टीवी चैनल के अनुसार यमन के प्रधानमंत्री के सलाहकार हमीद अब्दुल कादिर ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि UAE और सऊदी अरब यमनियों का खून बहाते रहें और इसके बदले में उनको कुछ भी न कहा जाए, इसका बदला उन्हें देना होगा। अब्दुल कादिर ने कहा कि इस समय संयुक्त अरब इमारात क्षेत्र में अमेरिका और इसराइल की परियोजना को लागू कर रहा है। इससे पहले यमन के विदेश मंत्री ने कहा था कि हमारा जवाब बहुत सख्त होगा। यमन ने हमलावर सऊदी अरब गठबंधन में शामिल देशों को खबरदार कर चुका है कि वे अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना उन्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि जवाबी हमले के तौर पर यमन की सेना और स्वयंसेवी फोर्सेज ने हालिया दिनों जो कार्रवाई की है वो उनकी ताकत का बहुत छोटा सा भाग है। यमन के विदेश मंत्री के अनुसार, यमन पर हमला करने वाले देश अगर ये चाहते हैं कि यमन की सेना और वहां के स्वयंसेवी उन पर हमले न करें तो पहले उनको अपनी कार्रवाइयां रोकनी होंगी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को यमनी सेना और वहां के स्वयंसेवी बलों ने सऊदी अरब तथा इमारात के भीतर यमनी तूफान टू नाम से एक बड़ा हमला किया था।
इराक के प्रधानमंत्री ने एक शिष्टमंडल के साथ औचक सीरिया से लगने वाली इराक की सीमा का दौरा किया है। शफक न्यूज़ के अनुसार मुस्तफ़ा अल काज़मी बिना बताए हुए एकदम से सीरिया से लगने वाली इराक की सीमा पर पहुंचे। उनके साथ इराक के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और इराक की सेना के वरिष्ठ कमांडर भी मौजूद थे। अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इराक के प्रधानमंत्री ने बिना बताए एकदम से सीरिया से मिलने वाली इराक की सीमा का निरीक्षण क्यों किया। याद रहे कि हालिया दिनों में आतंकवादी गुट दाइश की बढ़ती आतंकी कार्रवाइयों के बाद सीरिया से मिलने वाली इराक की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को इराक के स्वयंसेवी बल हशदुशाबी के कमांडर ने इराक के नैनवा प्रांत में ऐलान किया था कि सीरिया के अलहस्का जेल पर दाइश के आक्रमण के बाद सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है।
इराक के स्वयंसेवी बल हशदुशाबी का कहना है कि अमेरिका के सैन्य सलाहकार इस देश के सैनिकों की तुलना में अधिक खतरनाक हैं। हशदुशाबी के कमांडर कासिम मुस्लेह ने बुधवार को बताया कि जब तक इराक में अमेरिकी सैनिक किसी भी रूप में रहेंगे उस समय तक इस देश में आतंकवादी गुट दाइश की हरकतें जारी रहेंगी। उनका कहना था कि इन अमरीकी सैन्य सलाहकारों की वजह से दाइश निश्चिंत हैं। कासिम मुस्लेह ने बताया कि सीरिया के अलहस्का करावस से भागने वाले दाइश के आतंकवादियों का इराक में प्रवेश कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में हमने सारी आवश्यक कार्रवाइयां कर ली हैं। उनका ये भी कहना था कि इस संबंध में देश की सेना और हशदुशाबी के बीच उचित समन्वय पाया जाता है।
रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि उनके देश को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका और उसके घटकों ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस के विरुद्ध यूक्रेन को लगातार उकसाया जा रहा है। सर्गेई लावरोफ ने ड्यूमा की बैठक में कहा कि हम देख रहे हैं कि रूस की सीमा के निकट उकसाने वाले सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य यूक्रेन को नेटो में लाना है। रूसी विदेश मंत्री ने बताया कि यूक्रेन के लिए विध्वंसक हथियार भेजे जा रहे हैं ताकि उसको रूस के विरुद्ध उकसाया जा सके। रूस के विदेश उप मंत्री अलेक्जेंडर ने कहा था कि पूर्वी यूरोप के देशों में नेटो के अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती इस बात का सबूत है कि नेटो सैनिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि पश्चिम की इन कार्रवाइयों को हम सहन नहीं करेंगे। सर्गेई लावरोफ के अनुसार पश्चिम की ये कार्रवाइयां अगर जारी रहती हैं तो फिर वे बिना उत्तर के बाकी नहीं रह पाएंगी।
अमेरिका में कराए गए सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं कि जो बाइडेन की तुलना में व्लादिमीर पुतिन अधिक शक्तिशाली हैं। फास्ट न्यूज़ के अनुसार अधिकांश रिपब्लिकन्स का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में अधिक सशक्त हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 62% रिपब्लिकन्स की यही राय है। 25% का ये कहना था कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कमज़ोर नहीं है। यह सर्वेक्षण यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव के दौरान 20 से 24 जनवरी के बीच कराए गए। इससे पहले अमेरिका के भीतर इस देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता के बारे में कराए गए सर्वेक्षण ये बताते हैं कि उनकी लोकप्रियता अपने निम्न स्तर पर है। सत्ता संभालने के बाद से बाइडेन की लोकप्रियता में कमी आई है, जो सत्ता संभालने के एक वर्ष के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच चुकी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में बढ़ती महंगाई और कोरोना को लेकर जो बाइडेन की आलोचनाएं तेज हो गई हैं।
अमेरिकी कंपनी ने कोरोना वैक्सीन बेचकर अरबों डॉलर की कमाई की है। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने ऐलान किया है कि 2021 में कोरोना वैक्सीन बेचकर उसको 24 अरब $800 मिलियन की कमाई हुई है। CNBC की रिपोर्ट के अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने 2021 की अपनी चौथी तिमाही रिपोर्ट में ये बताया है कि उसको कोरोना वैक्सीन बेचकर कम से कम 24 अरब $800 मिलियन की आय हुई है जो पिछली तिमाही में 22.48 अरब डॉलर थी। इस प्रकार से जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को 2020 की तुलना में 104% की अधिक आय हुई है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में विस्तार पर बल दिया है। पेश है एक समीक्षा मोहम्मद मेहंदी की जबानी।
राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने बल देकर कहा है कि ईरान समस्त देशों विशेषकर पड़ोसी और इस्लामी देशों के साथ संबंधों में विस्तार चाहता है। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने तेहरान में ब्रुनेई के नए राजदूत इस्माइल अब्दुल मनाफा का प्रत्ययपत्र स्वीकार करते हुए पड़ोसी देशों के साथ संबंध विस्तार पर बल दिया। ईरान की नई सरकार ने जब से कार्यभार संभाला है उसने संतुलित विदेश नीति अपनाया है और उसने अपने क्रियाकलापों से दर्शा दिया है कि समस्त देशों विशेषकर पड़ोसी और इस्लामी देशों से संबंधों में विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने इस समय दुनिया में होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए बल देकर कहा कि राष्ट्रों के हित नए विश्व को समझने और दूसरे देशों के साथ लेन देन पर निर्भर है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की विदेश नीति की एक विशेषता प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने के अलावा राष्ट्रीय हितों की आपूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं से लाभ उठाना है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने अभी हाल ही में अपने न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान यूरोपीय देशों के अधिकारियों और विदेश मंत्रियों के साथ जो वार्ता और विचारों का आदान प्रदान किया था और इसी प्रकार तेहरान के खिलाफ प्रतिबंधों को समाप्त कराने के संबंध में वियना में जो परमाणु वार्ता हो रही है वो इस बात की सूचक है कि ईरान दुनिया के देशों के साथ लेन देन चाहता है और उसने संतुलित विदेश नीति अपना रखी है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने इस बारे में कहा है कि यूरोपीय देशों के 18 विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात और विचार विमर्श इस बात का सूचक है कि पूर्व की ओर ध्यान दिए जाने की नीति अपनाए जाने का अर्थ पश्चिम को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना नहीं है। इस समय भी पश्चिम एशिया में कुछ अशांतियां जारी हैं और अमेरिका अपमानजनक तरीके से क्षेत्र से निकलने के लिए बाध्य हो गया है और इसी आधार पर अमेरिका और क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों से मुकाबले के लिए क्षेत्रीय देशों के मध्य सहकारिता व सहयोग पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। ईरान की वर्तमान सरकार क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग व सहकारिता पर जो अधिक बल दे रही है उसका एक कारण यह है कि जब क्षेत्रीय देशों के मध्य सहकारिता में वृद्धि हो जाएगी तो आपसी तनावों और मतभेदों के कारणों को समाप्त और कम करने में भी मदद मिलेगी। बहरहाल क्षेत्रीय देशों के मध्य सहयोग व सहकारिता में वृद्धि जहां क्षेत्र के विकास का कारण बनेगी वहीं क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में विदेशियों के हस्तक्षेप में कमी का भी कारण बनेगी।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
तुर्की में भारी हिमपात ने जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। पेश है एक रिपोर्ट अहमद अब्बास की जबानी।
तुर्की का 1,60,00,000 की आबादी वाला महानगर इस्तांबुल भारी हिमपात की चपेट में है। एक हफ्ते से भारी बर्फबारी ने पूरे तुर्की को कठिनाई में डाल रखा है, लेकिन राजधानी अंकारा और इस्तांबुल में हालात ज्यादा पेचीदा हो गए हैं। स्थानीय नागरिक का कहना है कि गलियों और सड़कों पर चलना कठिन हो गया है। अल्लाह की नेमत से हम बहुत खुश हैं, लेकिन कठिन समय से गुजर रहे हैं। इस्तांबुल के नए एयरपोर्ट की सारी उड़ानें पिछले 48 घंटे से बंद पड़ी हैं और यात्री परेशान हैं। ईरान के फुटबॉल खिलाड़ी मेहदी तारुमी भी इस्तांबुल पहुंचने वाले थे, लेकिन अभ्यास मैच के लिए नहीं पहुंच सके। इस्तांबुल के लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे। शहर में आम जनजीवन सामान्य डगर पर नहीं लौट सका है। पूर्वी और केंद्रीय भागों में तापमान 10 से 40 डिग्री माइनस तक गिर गया है। लोग बर्फबारी की नेमत से खुश हैं, लेकिन इस साल की ठंड बहुत कठिन साबित हो रही है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्थानीय नागरिक का कहना है कि अल्लाह का शुक्र बहुत बर्फबारी हुई, लेकिन कारोबार ठप हो गया है और जीवन कठिन हो गया है। तुर्की के दक्षिणी इलाकों में भी जो गर्म इलाके हैं बर्फबारी हुई है। दक्षिणी तुर्की के दियारबकर जैसे शहर तो पिछले 50 साल से हिमपात नहीं देख सके थे। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि अगला पूरा हफ्ता पूर्वी से पश्चिमी तुर्की तक हिमपात जारी रहेगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यहां तक कि ईरान के भी कुछ इलाके जो तुर्की की सीमा के करीब हैं, वहां ठंड बढ़ जाएगी। अंकारा से IRIB के लिए हमीद कामिली की रिपोर्ट।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोहों का आयोजन किया गया है। ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से सिप्ते हसन।
भारत भर में आज 73वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस हवाले से सबसे बड़ा समारोह नई दिल्ली के राजपथ में आयोजित हुआ, जहां भारत के राष्ट्रपति ने परेड पर सलामी ली और भारत का तिरंगा लहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। यहां ये बात उल्लेखनीय है कि आज परेड के बीच भारत ने सेना की ताकत का भरपूर मुजाहरा भी किया। भारत के साथ साथ भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से तमाम जिला स्तर पर समारोह आयोजित हुए, और इस हवाले से सबसे बड़े दो समारोह जम्मू और श्रीनगर में आयोजित हुए। जम्मू में LD के LG मनोज सिन्हा ने परेड पर सलामी ली और कौमी परचम लहराया, जबकि श्रीनगर में उनके एडवाइजर RR भटनागर ने परेड पर सलामी ली और कौमी परचम लहराया। श्रीनगर और घाटी के अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा के बहुत ही कड़े प्रबंध किए गए थे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम, जहां ये सभा आयोजित हुई, मैं परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं थी। जबरदस्त सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। इस बीच अलगाववादियों के आह्वान पर घाटी में एक आम बंद के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। श्रीनगर और घाटी के अन्य कस्बजात में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि मार्गों से वाहनों का भी गुजर नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि समारोह अच्छे वातावरण में होना इस अच्छे संकेत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसी भी क्षेत्र से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस बीच श्रीनगर के लालचौक में सोशल एक्टिविस्ट, जो असल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, ने भी तिरंगा लहराया और इस अवसर पर एक समारोह भी आयोजित हुआ, परंतु दो घंटों के बीच ही तिरंगे को वहां से हटा दिया गया, जिस पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि ये तिरंगे की तौहीन है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम शौर्य गाथा, और उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम आज कल।
शौर्य गाथा।
दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में हम 1980 के दशक में ईरान पर सद्दाम शासन के हमले के जवाब में ईरानी जनता और फोर्सेस की वीरता और साहस की चर्चा करते हैं। स्वाति और अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार करें।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि ईरान ने जब सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 598 को स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद इराकी सेना के व्यापक समर्थन से ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया गया। आतंकी संगठन एमकेओ का सरगना मसूद रजवी ये समझ रहा था कि ईरान ने प्रस्ताव 598 को स्वीकार किया है तो केवल इसलिए अब ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है। अब देश की आम जनता ईरानी शासन के बजाय हमलावर एमकेओ संगठन का समर्थन करेगी। मगर हुआ ये कि ईरानी जियालों ने फोर्सेस की सहायता से आतंकियों के हमले को नाकाम बना दिया और बड़े पैमाने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस तरह उन्हें ऐसा सबक मिला जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। जब ऑपरेशन समाप्त हुआ तो देखने में आया कि किरमान शाह इस्लामाबाद रोड पर बड़ी संख्या में आतंकियों के शव और उनके सैन्य उपकरण बिखरे हुए थे। इस ऑपरेशन में एमकेओ ने 72 टैंकों, 21 बख्तरबंद गाड़ियों, 51 तोपों और 612 गाड़ियों का इस्तेमाल किया था। आतंकियों का ये ऑपरेशन पूरी तरह नाकाम हो गया और ईरानी जियालों का ऑपरेशन मिरसाद जबरदस्त कामयाब हुआ।
इस ऑपरेशन में लगभग 30% एमकेओ आतंकी यानी लगभग 2000 आतंकी मारे गए और 1100 से अधिक घायल हुए। ईरानी फोर्सेज एक बार फिर इराक से लगने वाली सीमा पर तैनात हो गई। 994 आतंकी भागने में कामयाब हुए। यह ऑपरेशन खत्म होने के बाद किरमानशाह रोड पर मारे गए आतंकियों के पास से 1100 के करीब अमेरिकी और यूरोपीय देशों के पासपोर्ट मिले। इन पासपोर्टों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन देशों ने किस तरह का लालच देकर इन आतंकियों को ईरान पर हमले के लिए तैयार किया था।
इस ऑपरेशन में गिरफ्तार होने वाले एक आतंकी ने ईरान पर आतंकियों के हमले को इराकी सेना से मिलने वाली भरपूर कवर का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रस्ताव 598 को ईरान की ओर से स्वीकार किए जाने के बाद एमकेओ संगठन के सरगनाओं में यह गलत धारणा पैदा हुई कि ईरान की जनता युद्ध से थक चुकी है। इस गलत धारणा और ऑपरेशन से मिलने वाली शिकस्त की वजह से एमकेओ की साख मलियामेट हो गई। सद्दाम शासन और आतंकी संगठन एमकेओ की ओर से ईरान के भीतर संयुक्त ऑपरेशन पर बहुत व्यापक स्तर पर प्रतिक्रियाएं देखने में आईं। स्थिति ये हो गई कि संगठन के नेतृत्व और आम सदस्यों के बीच गहरे मतभेद पैदा हो गए। सद्दाम और आतंकी संगठन एमकेओ ने यह हमला तब किया जब ईरान 598 प्रस्ताव स्वीकार कर चुका था और दुनिया ये मान कर चल रही थी कि अब जंग खत्म हुई, लेकिन सद्दाम और एमकेओ ने अपनी हरकत से यह साबित कर दिया है कि वो अब भी होश में नहीं आए हैं।
इंडिपेंडेंट अखबार के पत्रकार हार्वी मोरिस ने एमकेओ की लक्ष्यों और रणनीति का जायजा लेते हुए लिखा कि जाहिरी तौर पर एमकेओ और सद्दाम की रणनीति ये थी कि एक इलाके पर कब्जा कर लिया जाए जहां एमकेओ और दूसरे ईरानी विरोधी संगठनों को तैनात किया जाए। इस तरह अंतिम समझौते में ईरान पर दबाव डालने में मदद मिल जाएगी। लंदन से प्रकाशित गार्डियन अखबार के विश्लेषक डेविड हर्स्ट ने भी लिखा कि रजवी के समर्थक रजवी के साथी ईरान की जनता की सोच और भावनाओं को समझने में नाकाम रहे। उनको पता ही नहीं कि ईरान की जनता एमकेओ जैसे चरमपंथी विचार रखने वाले हर संगठन की विरोधी है। रजवी ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने अपना पूरा नेटवर्क सद्दाम को सौंप दिया। रजवी के आलोचकों का कहना है कि ये काम करके रजवी ने दरअसल राजनीतिक खुदकुशी कर ली। गार्डियन अखबार के टीकाकार अपने लेख के आखिर में लिखते हैं कि जब यह कदम उठाया गया तो ईरान की जनता का जज्बा नए सिरे से जाग उठा और जनता अंदर से बिखर जाने के बजाय और भी मजबूती से डट गई। मिर्साद ऑपरेशन 8 साल तक चलने वाले युद्ध में ईरान का आखिरी प्रतिरक्षात्मक ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन IRGC सेना और पश्चिमी ईरान की जनता के सराहनीय सहयोग से कामयाब हुआ।
सद्दाम ये समझ रहा था कि ईरान पर इस हमले के जरिए एमकेओ के भरपूर समर्थन से ईरान को ऐसी स्थिति में पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा कि जब ईरान मजबूर हो जाए और सद्दाम की ओर से किसी भी तरह की मांग को स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई चारा न रहे। मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान की जनता एक बार फिर संगठित होकर डट गई और भरपूर उत्साह के साथ जंग के मोर्चे की ओर आगे बढ़ी और एक बार फिर दुश्मन की सैन्य शक्ति को ध्वस्त करते हुए उन्हें अपने इलाके से मार भगाया। इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि जिस दिन थोपा गया युद्ध रुका उस दिन किरमांशाह और अहवाज में प्रगति की लाख कोशिश के बावजूद इराकी सेना सफल नहीं हुई। धीरे धीरे इराक पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। सारे पर्यवेक्षक और टीकाकार इराक और एमकेओ की गतिविधियों को शक की नजर से देखने लगे। खुर्रम शहर पर दोबारा कब्जा करने की इराकियों ने कोशिश शुरू की तो इन हालात में इमाम खुमैनी ने एक संदेश जारी किया जिस पर IRGC और जनता की प्रतिक्रिया बिल्कुल वही थी जो जंग के शुरू के दिनों में हुआ करती थी। जंग के मामलों के सुप्रीम कमांडर श्री हाशमी ने देश के अंदरूनी हालात और स्वयं सेवी फोर्सेस के उत्साह के बारे में कहा था कि ताजगी और जिहाद की महक हर जगह महसूस हो रही है।
इमाम खुमैनी ने अपने संदेश में कहा था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मोर्चों पर पहुंचे तो 130,000 स्वयंसेवी मोर्चों की ओर रवाना हो गए। लोगों में इतना उत्साह था और लोग इतनी अधिक संख्या में सामने आ रहे थे कि अधिकारियों के लिए उन सबको संगठित करना और उनके लिए जरूरी इंतजाम करना कठिन हो गया था। 10,000 सैनिकों की जाइश वाली एक छावनी के एक कमांडर ने बताया कि हमने इस छावनी में 16,000 लोगों के लिए इंतजाम किया। पता चला कि अभी और 4,000 सैनिक आ रहे हैं। ये हालात थे कि बहुत से सैनिकों को खुले में सोना पड़ता था। ईरान की ओर से प्रस्ताव 598 को स्वीकार किए जाने के बाद इराक की ओर से ईरान पर बड़ा हमला बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों को बेनकाब करने वाला था। ईरान ने शर्त रखी थी कि हमलावर सद्दाम शासन की आलोचना की जाए और उससे हर्जाना दिलवाया जाए, मगर ईरान की इस मांग को नजरअंदाज किया गया। ईरान के विरोधियों की ओर से व्यापक प्रोपेगेंडे की वजह से कुछ लोगों को ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में संदेह होने लगा था।
ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति आयतुल्ला खामेनाई ने उस समय अहवाज में अपने एक भाषण में कहा था कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इराक युद्धोन्मादी है। कुछ लोगों को यकीन नहीं आता था, कुछ लोग जानते हुए भी अनजान बनते थे, लेकिन आज हमारी बात पुख्ता तौर पर साबित हो चुकी है। श्री हाशमी ने भी इस बारे में कहा कि अब तक हम आत्मरक्षा करते थे और हम पर आरोप लगाया जाता था कि ये लोग युद्ध चाहते हैं, शांति नहीं चाहते। कोई ध्यान नहीं देता था कि हमारी जनता ये कहती है कि हम अपना अधिकार लेने में विजय हासिल करने तक जंग करेंगे। हमारा इरादा दूसरों के अधिकारों पर कब्जा न करना है। आज दुनिया में हम शांति प्रेमी की पहचान रखते हैं और सद्दाम हमलावर के रूप में जाना जाता है। विदेशी मीडिया और टीकाकारों ने कहा कि ईरान में जनमत के स्तर पर बड़ा बदलाव आया है। लंदन रेडियो ने इस बारे में कहा कि ईरान की ओर से प्रस्ताव 598 स्वीकार कर लिए जाने के बाद सद्दाम का ईरान पर हमला वजह बना कि विश्व जनमत की नज़र में ईरान की इस्लामी सरकार की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाए। ईरान में 1980 के पतझड़ के मौसम जैसा उत्साह दिखाई दे रहा है। इराक के ताज़ा हमलों से ईरानी रक्षा सिस्टम में नई जान पड़ गई है और रक्षा के लिए जनता की गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं।
बाद में अल सफीर अखबार में इराकी सेना के लिए सैनिक ने एक लेख में लिखा कि जब ईरानी फोर्सेज ने संघर्ष विराम को मंजूर कर लिया तो इराकी नेतृत्व ने अब नई चाल शुरू कर दी। उससे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती हो गई कि उसने इराक पर बड़ा हमला कर दिया। सद्दाम की सेना खुजिस्तान और खास तौर पर अहवाज के करीब पहुंची तो ईरान में एक बड़ा बदलाव देखने में आया। बदलाव यह था कि जहां इससे पहले ईरान के पास स्वयं सेवी सैनिकों की कमी थी, अचानक लोगों में ऐसा उत्साह भर गया कि सब मोर्चे की ओर आगे बढ़ने लगे।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम जंग के आखिरी दिनों और सद्दाम की ओर से युद्ध विराम स्वीकार किए जाने के बारे में चर्चा करेंगे।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आज कल लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और कायम रिजी का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में कोरोना काल में कला की स्थिति पर चर्चा करेंगे।
दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। करोड़ों लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। विश्व में लाखों लोग कोरोना महामारी की बलि चढ़ चुके हैं। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए अब वैक्सीन को पेश किया गया है। पूरे विश्व में लोगों को वैक्सीन लगाने का काम जारी है। ऐसे में ये आशा बढ़ रही है कि वैक्सीन के माध्यम से कोरोना संकट को समाप्त किया जा सकेगा। नए साल में हम यही आशा करते हैं कि कोरोना नामी विश्वव्यापी बीमारी अब समाप्त हो जाएगी।
दुनिया में बहुत से कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में नाम कमाया है। उन्हीं में एक सुलेमान मंसूर भी हैं। वे फिलिस्तीन से संबंध रखते हैं। सुलेमान मंसूर का जन्म 1947 में फिलिस्तीन के रामल्ला में हुआ था। इस समय उनकी आयु 75 वर्ष है। पेंटिंग और मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली कला में वे फिलिस्तीन में बहुत आगे हैं। सुलेमान मंसूर की एक विशेषता यह है कि वे फिलिस्तीनी आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं। शायद यही वजह है कि उनको इंतफाजा कलाकार के नाम से पुकारा जाता है।
اس فلسطینی کلاکار نے سن 2016 میں ایک پینٹنگ بنائی تھی جس کا نام تھا میرا نام فلسطین ہے اور میں زندہ رہوں گا۔ سن 2022 کی شبھ کامنا دیتے ہوئے سلیمان منصور نے کہا تھا کہ نیا سال سب کو مبارک ہو اور آشا ہے کہ اس سال ہم ادھک درڑھتا کے ساتھ سنگھرش کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میری ہی طرح آپ کے من میں بھی اس پینٹنگ کو دیکھ کر فلسطینیوں کو اتیاچاروں سے مکتی دلانے کی بات آئے۔ فلسطینی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے وبھن بھاگوں میں اس امید کے ساتھ جیون گزار رہے ہیں کہ ایک دن وہ بھی اپنی ماتر بھومی واپس جائیں گے۔
سلیمان منصور کہتے ہیں، میرے من میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ ایک ویشوک سنکٹ کے دوران سامانیہ جیون کے پٹری سے اتر جانے کے بعد ایک کلاکار اس کو کس درشٹی سے دیکھتا ہے؟ کلاکاروں کی اتی سنویدنشیل اور کومل بھاونائیں سنکٹ کے سمے کیسی پرتکریائیں دیتی ہیں، اور کیا کٹھن پرستھتیوں میں کلا آشا کو جیوت رکھ سکتی ہے؟ اس جواب کو جاننے کے لیے ہمیں پچھلے 2 ورشوں کے دوران کلاکاروں کے ویوہار اور ان کی گتیویدھیوں کو دیکھنا ہوگا، جس دوران پورا وشو کورونا کی گرفت میں تھا۔ واستو میں یہ بہت ہی کٹھن سمے تھا۔ اس کٹھن سمے میں سواستھیہ کرمیوں نے جو کیا وہ تو سراہنیہ تھا، کنتو ادھکانش کلاکاروں نے اس دوران جنتا کا ساتھ دیتے ہوئے ان کو ہمت دلائی۔ کلاکار بھی کورونا سے پربھاوت ہوئے، کنتو اس کو اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ لوگوں کے بھیتر آشا جگاتے رہے۔
یہ ایک واسطوکتا ہے کہ مانو جیون کو سنکٹوں کا سامنا رہا ہے، لیکن وشیش بات یہ ہے کہ سنکٹوں کے بیچ بھی زندگی چلتی رہتی ہے۔ ایسے میں آشا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس سماج میں لوگوں کے بھیتر آشا پائی جائے گی، وہاں پر جیون کے پرتی نراشا نہیں دیکھی جاتی۔ جیون میں خوشی بھی تبھی آتی ہے جب ویکتی کے بھیتر آشا موجود ہوتی ہے۔ جیون میں خوشی کے بارے میں ایک برٹش منوویگیانک مائیکل انسیک کا کہنا ہے کہ خوشی واسطو میں درد رہت من کی سوامی ہے جو آنترک سنتشتی پردان کرتی ہے۔ آشا اور خوشی سے جیون گزارنے سے جیون کے ڈھنگ میں پریورتن آ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منش بھیتر سے سنتشت ہے۔ اس بارے میں مہان دارشنک ارسطو کا یہ کہنا ہے کہ منش کے جیون میں سب سے اچھی جو چیز ہے وہ ہے من کی شانتی۔ اس کا اتنا ادھک مہتو ہے کہ جیون کی بہت سی باتیں اس سے سمبندھت ہیں۔
پچھلے 2 ورشوں سے ہم کورونا کی چپیٹ میں ہیں۔ اسی کورونا کے کارن بہت سے لوگوں کے بھیتر خوشی اور آشا سماپت ہو چکی ہے۔ اس دوران ہم نے اپنے بہت سے پریجنوں اور نکٹورتیوں کو کھو دیا، جس کے کارن ہماری استھتی بدل چکی ہے۔ اس کے اترکت کورونا یا COVID-19 نے پوری دنیا کو پریورتت کر دیا ہے، جس کے کارن بہت سی سمسیائیں وشو استر پر پیدا ہوئی ہیں۔
ہالینڈ کے ایک لیکھک روتگیر برگمان اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ سنکٹ ہمیشہ ہی سماجوں کے لیے ایک مہتوپورن موڑ سدھ ہوا ہے۔ جب کورونا کی شروعات ہوئی اور یہ بہت تیزی سے پھیلنے لگا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سنکٹ مانوتا کو اندھکار کی اور لے جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اتہاس نے یہ سدھ کر دیا ہے کہ مانوی سنکٹ مانو سماج کے لیے ایک موڑ سدھ ہوا ہے۔
رتگر برگمان نے حال ہی میں اپنا ایک لیکھ ٹائمز پتریکا کو دیا ہے۔ اس لیکھ میں وہ کہتے ہیں کہ کورونا سنکٹ کو سکاراتمک درشٹی سے دیکھتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کورونا وائرس نے کس طرح سے دنیا کو بدلا ہے۔ یہاں پر ہمیں اس بات کو ہی سمجھنا چاہیے کہ اس پرکار کے سنکٹوں میں بری گھٹنائیں بھی گھٹتی ہیں، لیکن ان سے مقابلے کی ہمت ہمیں اس پرکار کے سنکٹوں سے مقابلے کے لیے پریرت کرتی ہے۔
پچھلے 2 ورشوں کے دوران جب سے دنیا کورونا مہاماری کے سنکٹ میں گرست ہے، اس دوران کلا سے سمبندھت سارے ہی شیتروں نے بہت ادھک نقصان اٹھایا ہے، جس میں سنیما جگت، سنگیت اور ناٹک منچ آدی نے بہت برے دن دیکھے۔ इस वैश्विक महामारी ने बहुत सी सामाजिक गतिविधियों को बाधित करते हुए कुछ को सीमित तो कुछ को समाप्त कर दिया। पूरी दुनिया में सिनेमा हॉल और नाटक मंच बंद रहे। इन बातों से कलाकारों को आर्थिक दृष्टि से बहुत ही बुरे दौर से गुजरना पड़ा।
ईरान के एक गायक और संगीतकार कामकार कहते हैं कि वो बड़ा कठिन दौर था जिसने हम सबको बहुत नुकसान पहुंचाया। विशेषकर वे लोग जो ग्रुप में काम करते थे, वे कोरोना के दौरान एक दूसरे से बिछड़ गए और नाना प्रकार की समस्याओं में घिर गए। इस ईरानी संगीतकार ने 2022 के आरंभ में आशा जताई है कि हालात सामान्य हो जाएंगे और ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। उन्होंने ये बात भी कही कि विगत में भी कई प्रकार की महामारियां आ चुकी हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली, किंतु जिंदगी उस समय भी नहीं रुकी थी और आज भी नहीं रुकेगी। उनका मानना है कि हालात बेहतर होने लगे हैं जो आगे और भी बेहतर हो जाएंगे।
कोरोना के काल में सिनेमा जगत को भी बहुत क्षति हुई, लेकिन हालात से ऐसा लग रहा है कि इस साल सिनेमा उद्योग में विकास होगा। पहले तो लंबे समय तक सिनेमा हॉल बंद रहे और बाद में कोरोना के कारण स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हुए कम लोग ही सिनेमा हॉल तक पहुंच पाए, जिसके कारण उसकी आय में बहुत कमी आई। कहा यह जा रहा है कि सन 2021 में सिनेमा की टिकट खिड़कियों से केवल 1,92,00,000 डॉलर की आय हुई थी। जानकारों का ये मानना है कि इस वर्ष विश्व में कोरोना के बाद की स्थिति के कारण सिनेमा से कम 33 अरब डॉलर की आय हो सकती है। हालांकि ये बात भी हमें माननी होगी कि कोरोना के आने से पहले वाली स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें 2023 तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
जाने माने निर्माता निर्देशकों का ये कहना है कि हम सबको इस बात की उम्मीद है कि हम अब अधिक से अधिक लोगों को सिनेमा घरों तक लाएंगे और हालिया वर्षों में होने वाली क्षति की भरपाई करेंगे। एक ईरानी गायक मोहम्मद मोतमेदी का मानना है कि इन हालात में कि जब कोरोना ने लोगों के लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा कर दी हैं, ऐसे में संकट से उबरने की उम्मीद के संचार ने वातावरण को सामान्य बनाने में बहुत मदद की है।
इस कलाकार का कहना है कि मुझको आशा है कि पेड़ फिर से हरे होंगे, उन पर कलियां आएंगी, हम सब एक बार फिर बहार की बुलबुलों की आवाजें सुन सकेंगे, फूल खिलेंगे और वे अपनी तरावत से हमको आनंदित करेंगे। इन कठिन दिनों में मेरा ये भी मानना है कि न केवल मेरे देश में बल्कि पूरे विश्व में एक बार फिर खुशहाली वापस आएगी। उन्होंने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि कठिन से कठिन बीमारी को आशा और प्रेरणा से दूर किया जा सकता है, अतः ऐसे में हमें आशा को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में एक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि खुशी की एक विशेषता यह है कि वो शरीर में इम्यूनिटी की सतह को बढ़ाती है और कलाकार इस बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मजीद नाजिमपुर कहते हैं कि कलाकारों की कृतियां हमेशा से रही हैं जो समाज और उसकी परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करती है। कलाकार अपने समाज से प्रभावित होकर अपनी रचनाओं या कामों को अंजाम देता है। हालिया 2 वर्षों के दौरान जब समाज में कोरोना एक बहुत ही भयावह और खतरनाक विषय के रूप में उभरा तो उसने कलाकारों की रचनात्मकता को भी प्रभावित किया। इस अंधकारमय दौर में कलाकारों को अपने उस दायित्व को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसके अंतर्गत उनका काम लोगों के भीतर उम्मीद की किरण को जगाना होता है।
इन 2 वर्षों के दौरान पूरी दुनिया में बहुत से लोगों ने अपना समय आइसोलेशन में गुजारा। इस दौरान यात्राएं रुक गईं और पर्यटन भी बंद रहा। इस दौरान कलाकारों ने ये प्रयास किया कि वे लोगों जो कोरोना ग्रस्त हैं उनके भीतर आशा की किरण भरें और उनको प्रेम का संदेश दें। इन्हीं लोगों में से एक फ्रांसीसी म्यूरल या भित्त चित्र कलाकार साइपे हैं। ये फ्रांसीसी कलाकार घास पर बायोडिग्रेडेबल पेंटिंग का प्रयोग करके पेंटिंग बनाने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम है गिलोम लेग्रोस।
उन्होंने कोरोना महामारी के फैलने के आरंभिक दिनों में स्विट्जरलैंड के पर्वतीय क्षेत्र लैसिन में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। इस कलाकृति का शीर्षक है बियॉन्ड द क्राइसिस, जिसमें एक लड़की को क्षितिज की ओर घूरते हुए दिखाया गया है। घास पर बैठी हुई ये लड़की कठपुतलियों की एक श्रृंखला को पूरा कर रही है। ये कलाकृति 2900 वर्ग मीटर से भी अधिक भूभाग पर बनी हुई है। इनको बनाने का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान लोगों को आशा और सकारात्मक सोच का संदेश देना है।
इसके साथ ही इसका एक अन्य उद्देश्य भविष्य में लोगों के बीच और अधिक एकता व एकजुटता स्थापित करना है। अपनी इस कलाकृति के बारे में उनका कहना है कि कोरोना के इस काल में पूरी दुनिया में अधिकांश लोगों को तरह तरह की सीमितताओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हम सभी इससे प्रभावित हुए हैं, किंतु हमें चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष करना चाहिए। गिलोम लेग्रोस के अनुसार कोरोना काल में पूरी दुनिया के लोगों के लिए आशा का संदेश देना काफी है।
तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@irib.ir। हमारी वेबसाइट है partstoday.com/hi। इस पर आप अपनी सुविधा के अनुसार हमारे कार्यक्रमों को देख सकते हैं। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा भी यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज।